मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 14 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सभी के साथ ही मैं यहां स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं सत्येंद्र कुमार भारती, आप गोविंद खेड़ा उत्तर प्रदेश से हैं, विकेश नंदन, आप सलालपुर बिहार से हैं, आशुतोष कौशिक, आप हिसार हरियाणा से हैं, राज कपूर कुमार, आप जहानाबाद बिहार से हैं, अर्पित राय, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, और परमजीत कुमार, आप पटना बिहार से हैं। तो आप 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, एक सूचना के साथ, और वह यह कि कल स्वतंत्रता दिवस है, तो सूचना तो यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है और राष्ट्रीय अवकाश भी है, तो कल डेली ऑडियो अवेलेबल नहीं होगा, तो यह सूचना है। लेकिन चूंकि कल मैं आपसे बातचीत इस तरह से सीधे सीधे मुखातिब होकर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आप सबको स्वतंत्रता की बहुत बहुत पूर्व शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में भी आज हम बात करेंगे कि हमने आजादी के जो 70 वर्ष पूरे किए हैं, इस 70 वर्ष में को हम एक तरीके से रिव्यू करेंगे। और खासकर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से जब आप रिव्यू करेंगे तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो आप विषय का टाइटल, आप आज के विषय का शीर्षक कह सकते हैं, आजादी के बाद की समीक्षा, रिव्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम रिव्यू पर आए, आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। एक होती है घटनाएं, इवेंट्स, राइट? कोई भी इवेंट होता है, आप देखेंगे कि आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए तो उसमें आपको अक्सर मिलेगा कि उदाहरण देकर बताइए, समझाइए। अब आप उदाहरण कैसे देंगे? तो उदाहरण चूंकि करंट अफेयर्स से है तो बट नेचुरल है कि आपको अब 20 साल पहले का उदाहरण नहीं देना चाहिए, होना यह चाहिए कि आप करंट से उदाहरण लेकर के आए। तो जो उदाहरण देने हैं और वो करंट से देने हैं तो वो क्या हो गया? इवेंट, वो घटनाएं हो गई। लेकिन घटनाओं का विवरण तो पूछा नहीं जाएगा कि आप इस घटना के बारे में बताइए। उस इवेंट के पीछे या उस न्यूज के पीछे आप यूं कह लीजिए कि एक व्यूज भी होता है या कई कई व्यूज होते हैं। तो वो जो इवेंट है या वो जो न्यूज आइटम है उससे क्या क्या दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं, क्या क्या धाराएं निकल रही, विचारों की धाराएं निकल रही हैं, क्या क्या रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, प्रतिध्वनि क्या हो रही है, उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और सच पूछिए तो घटना तो एक आधार भर है, एक जन्म देने वाली जमीन है, महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण। लेकिन बिना घटना के वो दृष्टिकोण भी एक तरीके से आधे अधूरे जैसा हो जाता है, उसका सौंदर्य बहुत घट जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हमें दोनों पर ही एक तरीके से समान रूप में ध्यान देना होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर, न्यूज की जगह पर ये क्या सिद्धांत की बात करने लगे। मित्रों, मैं सिद्धांत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अब जिस न्यूज की चर्चा करने जा रहा हूं उसके केंद्र में यह सिद्धांत ही है। आप समझ गए होंगे शायद कि मैं किस न्यूज की बात करने जा रहा हूं। मैं उस न्यूज की बात करने जा रहा हूं जिसने अभी पूरे देश को एक तरीके से हिला कर रख दिया है, और वह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक अस्पताल में जो कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। आप देख रहे हैं कि वो कितनी दर्दनाक घटना है, एक साथ इतने नन्हे प्यारे छोटे बच्चों का निधन हो जाना, मृत्यु हो जानी अस्पताल में, ये कम बड़ी घटना नहीं है। कल्पना करके देखिए उन माता पिताओं की जो अस्पताल में अपने बच्चों को इसलिए भर्ती कराया था जिन्होंने, कि यहां से स्वस्थ होकर के निकलेंगे और इस रीजन से, इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो लापरवाही जिस तरीके की भी हो, जिसकी भी हो, अब माता पिता के लिए और उनको और भी जो उनके परिजन हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए इस दुख को पूरे जीवन भर क्या आधार क्या मिल सकता है। मित्रों कितनी दर्दनाक घटना है। तो मित्रों सबसे पहले तो हम सभी उन दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर जिन्होंने अपनी संतान खोई है उन्हें ताकत दे शक्ति दे ताकि वे इसे बर्दाश्त कर सकें। और साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हम सबको विवेक प्रदान करो ताकि इस तरह की लापरवाहियां हमसे आगे कभी न होने पाए। तो दोस्तों यह एक घटना है। अब आप देखें कि इस घटना से अब क्या चीजें प्रतिध्वनित हो रही हैं, कौन कौन से विचार क्या विचार निकल रहे हैं जो सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मित्रों चलिए स्वास्थ्य की हमारे देश की जो स्थिति है वह एक तरफ है राइट, लेकिन इसमें जो अगर थोड़े से और गहराई में जाएंगे अगर हम सिविल सर्विस के लेवल तक उतरने की कोशिश करेंगे तो दो बातें और दिखाई देती हैं। पहली बात तो है मैनेजमेंट प्रबंधन, यानी कि कोई भी संस्था एक प्रबंधन के तहत काम करती है उसका एक सिस्टम होता है। और अगर याद रखिए कि अगर सिस्टम अच्छा नहीं है तो उस संस्थान में चाहे कितने भी अच्छे लोग हों बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं उसकी जो मशीनरी है जैसे अस्पताल में अगर हम कहें तो सारी सुविधाएं हैं दवाइयां हैं मान लीजिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं बहुत अच्छे बिस्तर हैं सारी चीजें हैं जो एक अच्छे आदर्श अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो मान करके चलिए कि वो संस्थान अच्छे से काम नहीं कर सकता क्योंकि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है विभाग है लोग हैं ये सब मैनेजमेंट के माध्यम से ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और ये मैनेजमेंट ही होता है जो वहां के काम करने वाले लोगों के मन में एक तरीके उनके मॉरलिटी को हाई करता है, काम करने के लिए उनके दिमाग में एक नैतिकता पैदा करता है, उनमें ईमानदारी की भावना का संचार करता है और अगर संस्थान अस्पताल जैसे हों तो सेवा का भाव भी भरता है। तो दोस्तों ये जो एक घटना है पहला सवाल पैदा करता है कि इतने संवेदनशील संस्थान में मैनेजमेंट की क्या स्थिति थी। पहली बात मैं केवल इशारे के तौर पर बात कर रहा हूं और आपको फिर मैगजीन से इसे पूरा करना है और अपनी तरफ से सोच करके भी। जो दूसरा सवाल उठता है जो आपके जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर मेन्स से जुड़ा हुआ है वह है नैतिकता का सवाल, एथिक्स का सवाल। देखिए अभी तक जो अखबारों में पढ़ने में जो बातें आ रही हैं मैं उसी के आधार पर देखिए अपनी बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने कोई खोजी पत्रकारिता नहीं की है, मैं पूरे माफी के साथ ये बात कह रहा हूं। एक बात ये आ रही है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति था उसका पेमेंट नहीं हो रहा था, मतलब उस संस्थान को पेमेंट नहीं किया जा रहा था, बहुत दिन से लिखा पढ़ी चल रही थी उसका काफी पेमेंट बाकी था तो उसने ऑक्सीजन की सप्लाई करना बंद कर दिया। और ये पढ़ने में आ रहा है कि उस ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के कारण ही उन बच्चों की मौत हुई, क्या छोटा सा कारण था हद। चलिए अब आप देखिए कि वो जो संस्थान है और यहां जो एक अस्पताल भी एक संस्थान है और ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला एक निजी व्यावसायिक संस्थान है और ये सार्वजनिक संस्थान है अस्पताल है ना, दोनों के चरित्र अब आप देखिए। अखबार में यह भी पढ़ने में आया कि जो अस्पताल का जो संस्थान है जो भी जिन्हें भी पैसा रिलीज करना था उनकी डिमांड थी कि मुझे इतना पैसा दीजिए, ये नैतिकता है क्या? चीज आप किस चीज के लिए पैसा मांग रहे? पहली बात तो ये कि यही 100% गलत है, अवैधानिक है, अनैतिक है। फिर आप एक ऐसी शर्त पर पैसा मांग रहे हैं जो जीवन से इतने गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली उसने हो सकता है कि अब हम नहीं जानते हैं धमकियां भी दी हो कि भैया हम देना बंद कर देंगे अगर तुम हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे, ये भी उसने धमकी दी होगी हो सकता है, लेकिन कोई असर नहीं। इसके बाद देखिए कि फिर संस्थान ने क्या कदम उठाया, निजी संस्थान ने क्या कदम उठाया। निजी संस्थान ने यह कदम उठाया कि देना बंद कर दिया। किस कीमत पर? लोगों के जीवन की कीमत पर। तो दोनों जगह आपको संवेदनशीलता की शून्यता दिखाई दे रही है, यानी कि चाहे पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है लेकिन कम से कम किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की सप्लाई मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर बंद नहीं की जानी चाहिए थी। दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कोई इसका निर्णय नहीं दे रहा हूं, प्लीज आपको मैं केवल सिविल सर्विस की दृष्टि से ये बता रहा हूं कि आप इसे किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। फोर्थ पेपर में अगर पूछा जाता है तो इसी को लेकर के एक नैतिकता का सवाल आ जाता है, इस घटना को लेकर के या इसी घटना को आधार बनाकर के एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि किसी उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो फ्रेंड्स, बीज के रूप में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं इस एक घटना के आधार पर, और थोड़ा सा इशारे के तौर पर यह भी बताने की कोशिश की है कि कैसे एक इवेंट होता है, एक न्यूज होती है, और उसको अगर आप सिविल सर्विस के पैटर्न पर तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको व्यूज तक खुद को एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। दूसरी घटना भूस्खलन की है। आप दुर्भाग्यजनक खबर यह भी आपने देखी कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण कितने लोगों की मौत हो गई जो बस में सवारी आ रहे थे। तो भूस्खलन आपदा प्रबंधन का हिस्सा है। भूस्खलन क्यों होते हैं, हिमालयी क्षेत्र में खासकर क्यों होते हैं, इस पर आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाकर के देख लीजिए, तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं उन इश्यूज पर बात कर सकूं, लेकिन एक साइंटिफिक आपको इसका रीजन मालूम होना चाहिए कि हिमालयी क्षेत्र में ही भूस्खलन क्यों होते हैं और हिमालयी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं क्यों होती हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि बादल फटने की भी घटना एक दो जगह हुई है। इसके बाद जो एक छोटी सी खबर थी दोस्तों, वो है जमैका के जो धावक हैं उसैन बोल्ट, उन्होंने अब दौड़ से संन्यास ले लिया है। ये मालूम होना चाहिए कि उसैन बोल्ट बेसिकली धावक हैं और जमैका के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत से ओलंपिक मेडल भी जीते हैं। इसके बाद मित्रों, एक सूचना यह है कि पब्लिक स्पीक में आज जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर प्रोग्राम आना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर सुने। इसलिए ही नहीं कि क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए, बल्कि इसलिए भी कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। ये यूं कह लीजिए कि जो भ्रष्टाचार का मामला है ना, ये आलू है जिसको आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। खासकर फोर्थ पेपर में तो आपको ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां भ्रष्टाचार का उपयोग कर सकते हैं, आलू की तरह। वो यहां भी उसके बारे में थोड़ा लिख दिया, वहां भी उसके बारे में थोड़ा लिख दिया, जहां भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो इसे आप अगर सुन सकेंगे तो बेहतर होगा। मित्रों, बहुत ज्यादा वक्त स्वतंत्रता दिवस के रिव्यू पर नहीं मिला है, के लिए नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप इसका रिव्यू करेंगे कैसे। आइए, इसके बाद तो फिर अखबारों में आप लोगों को ढेर सारा पढ़ने को मिलेगा। और इस जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक ऐसी बात है ये जिसे अगर बार बार दोहराया जाए तब भी वो दोहराने जैसा नहीं लगता है और माना भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब हम स्वतंत्रता के बाद बात करते हैं, अपनी आजादी के बाद के वर्षों की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग क्या है कि सीधे सीधे रिएक्ट करता है, उस पर विचार नहीं करता। रिएक्ट क्या करता है, या तो हम समझते हैं कि आजादी के बाद हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, या हम ये सोचते हैं जब निगेटिव तरीके से जाते हैं तो क्या हासिल कर लिया, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, नेताओं की हालत देख लीजिए, लोग अभी भी दुनिया भर के गरीब हैं, भूखों मर रहे हैं, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो या तो हम एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं या हम एकदम निगेटिव हो जाते हैं, राइट। क्या हम दोनों ही स्थितियों में से अगर किसी भी स्थिति में है तो हम सही हैं? यहीं पर सिविल सर्विस में हम मार खा जाते हैं। इससे साफ लगता है कि हम बैलेंस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। किसी भी चीज को एक संतुलित तरीके से जिस नजरिए से देखा जाना चाहिए, वह नजरिया हमारे पास नहीं है। मित्रों, नो डाउट कि 70 साल की आजादी कम नहीं होती, 70 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम देखें कि 70 साल के दौरान केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा करने में दुनिया के दूसरे भी बहुत देश रहे हैं। चीन की भी आजादी लगभग इसी के आसपास है, अफ्रीका के बहुत से देशों की आजादी इसके आसपास है, कोरिया और भी बहुत से देश हैं जो इसी के आसपास आजाद हुए हैं, और उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, हमसे वो बहुत आगे हैं। ठीक है, यहां पर तो एक बात सही है कि हम 70 साल में शायद जितना करना चाहिए था हम उतना नहीं कर पाए हैं, यहां तक बात सही है। लेकिन यह भी नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है, और यह भी नहीं है कि दूसरों ने सब कुछ कर लिया है, उनकी तुलना में हमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि भारत की एक जो बहुत बड़ी विशेषता रही है इस आजादी के बाद के विकास की, कि उसने डाइवर्स फील्ड में उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तरफा उसकी या न तो उपलब्धियां रही हैं और न ही उसकी एक तरफा नाकामियां रही हैं। वो एक साथ इतने सारे क्षेत्रों में इतने सारे मोर्चों पर संघर्ष किया है हमारे देश ने। नो डाउट कि जब हमने संघर्ष किया है तो हम उस संघर्ष में आगे भी बढ़े हैं, सफलता भी प्राप्त की है। यह बात अलग है कि जो शत्रु था हमारा उसे पूरी तरह से नष्ट करने में हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो संघर्ष जारी है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां हमने शायद जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे भी अधिक सफलता हमने प्राप्त की है, या यूं कह लीजिए कि जितनी हमने उम्मीद की थी उतनी सफलता हमने हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से एक बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलना पड़ेगा, और जब आप तैयारी करेंगे तो आपको उसको क्रिटिकली देखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे सतही तौर पर कह दें कि हमने ये हासिल की, ये हासिल किया, ये हासिल किया, ये हासिल किया। जो कुछ भी हमने हासिल किया है, आप देखें कि कितने आंतरिक संघर्षों से गुजरते हुए हासिल किया है। जब हम आजाद हुए थे उस समय हमारे पास कोई इंडस्ट्री का बेस नहीं था, हमारे पास कैपिटल नहीं थी, हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी। हम विभाजन के भयानक हादसे के दौर से बुरी तरह से गुजर रहे थे। हमारी जो साक्षरता का जो प्रतिशत था वो हार्डली 18% था, यानी कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था। हमको एक ही चीज तो मिली थी और वो थी राजनीतिक स्वतंत्रता, दैट्स ऑल। पॉलिटिकल सिस्टम भी जो हमें मिला था वो सच पूछिए तो डेमोक्रेटिक जरूर था, लेकिन वो बहुत से राज्यों का समन्वय था जहां बहुत अलग तरह की भाषा, संस्कृति, लोग, विचारधाराएं ये थी। ये बात अलग है कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी थी। तो इन सब का समाहार करते हुए देश को आगे ले जाना ये कम बड़ी बात नहीं थी, और एक ऐसे दौर में जहां एक अंदरूनी तौर पर एक जबरदस्त किस्म का सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव भी मौजूद है। मतलब जो सांप्रदायिक दंगों के जो दौर है, आप देखिए कि ऐसा नहीं कि आजादी के बाद भारत में खत्म हो गए। आंतरिक सुरक्षा पर लगातार चोट होती रही, और फिर आजादी के 15 साल के बाद ही हमने चाइना से युद्ध हो गया, उसके 2-3 साल के बाद फिर पाकिस्तान से युद्ध हो गया। तो ये सारे इन सारे संकटों को झेलते हुए भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आपको उन्हें देखना होगा। तो दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर यह कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो याद रखिए कि परिस्थितियों को कभी भी किनारे मत कीजिए। हमने जो भी हासिल की या जो हमारी नाकामियां रहीं, हमें हमेशा परिस्थितियों के संदर्भ में उसे देखना चाहिए। और जैसे ही आप ये करने लगेंगे, आप देखेंगे कि वह जो आपका विश्लेषण है वो अपने आप तार्किक होता चला जाएगा, वैज्ञानिक होता चला जाएगा, और यही सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है। दोस्तों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसका रिव्यू करूं, लेकिन रिव्यू का मॉडल क्या होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने आप सबको बता दिया है। और जहां तक इसके लिए कंटेंट का सवाल है, कुछ मटेरियल का सवाल है, तो आज मैं आपको कुछ प्रेस क्लिपिंग्स ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें एक जनसत्ता का प्रेस क्लिपिंग है जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही तथ्यपूर्ण तरीके से लिखते हैं। उनका आर्टिकल है, दैनिक हिंदुस्तान का भी एक आर्टिकल है शशि शेखर जी का, उसमें आपको काफी कंपोनेंट में काफी कंटेंट मिल जाएंगे। और ठीक इसी तरह से हमारे जो एमजे अकबर साहब हैं, जो अभी यूनियन मिनिस्टर भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं, उनका भी एक उनका रिव्यू चलिए अभी के न्यू इंडिया पर ही है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उसमें भी आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो आप वहां देख करके तथ्य है उसमें, फिर उनका विश्लेषण कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट देखिए विश्लेषण होता है, तथ्य तो इस पर आपको और भी किताबों से काफी कुछ मिल जाएंगे। मित्रों, एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है सेंसरशिप पर। आपको मालूम है कि जो सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष थे पहलाज निहलानी जी, उनको हटा दिया गया है पद से, और उनकी जगह पर प्रसून जोशी जो हमारे फिल्म जगत के गीतकार हैं उनको बना दिया गया है। तो उसी को आधार बना करके वो आर्टिकल लिखा गया है, आप देख लेंगे, और 2-3 आर्टिकल मैं आपको और प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको आप देख लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। तो ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं शिल्पी कुमारी, मृगेंद्र द्विवेदी, हिरेन सोजिया सोजित्रा राजकोट गुजरात से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, कृति मिश्रा, वेंकटेश पटेल हिम्मतनगर गुजरात से, और राहुल कुमार। आप सभी का मैं एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इसे समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।